नमः शाम का समय, प्रभु मिलन मनाने का समय है। तो चलिए अब हम सुनेंगे योग की गहराई और साथ साथ योग का प्रयोग भी करेंगे। भाई साहब का सुनते सुनते उसी यादों में बाबा की शक्तियों से भरते अपने आप को उस स्थिति में ले चलेंगे योग की गहराई में और योग का प्रयोग करेंगे।
ओम शांति। बाबा की यादों में आप सब समाये हुए बैठे हैं, अनुभव कर रहे हैं जिस प्रीतम को इतने समय से पुकारा, उसके साथ अब हम आत्माओं का मिलन हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, इस देह भान से डिटैच होते हैं, तो बाबा के समीप पहुंच जाते हैं। बाबा ने हम सबको इतना सहज योग सिखाया है जिसके अंदर कोई भी क्रियाएं शारीरिक नहीं है। स्व की स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, अपने स्वदेश की स्मृति और स्वपिता की स्मृति, याद माना स्मृति। अगर अपने स्वस्वरूप की स्मृति कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य सितारा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली अद्भुत शक्ति, इस शरीर के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा, इससे अलग हूं, ये जब अनुभव होने लगता है तो अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा मन है, संकल्प शक्ति है। और इस संकल्प शक्ति पर अगर हमारा कंट्रोल है तो ये संकल्प ही हमारे लिए अंतर वाहन बन जाता है। शास्त्रों में इसको कहते हैं अंतर्वाहक शरीर। अंदर का जो मन है वो वाहन की तरह काम करने लगता है। जैसे बहुत अच्छा वाहन हो, उससे आप जहां भी यात्रा करना चाहो सहज कर सकते हो, ऐसे ही अंतर मन वाहन अपने स्वरूप में स्थित होते ही आत्मा उस वाहन में विराजमान हो जाती है और संकल्प शक्ति से ही साकार जगत से पार सब संकल्पों को समेट करके अपने सूक्ष्म वतन और मूल वतन की यात्रा करती है। योग की गहराई यथार्थ रूप में यही है कि हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर अपने पिता के साथ मिलन का अनुभव करें, उसकी याद में हम समा जाएं। और सहज विधि ये है कि जितना जितना उसके साथ जिगरी प्यार होता है उतना उसकी याद सहज बनी रहती है। जहां पर जिसका प्यार है, जिससे संबंध है, जहां से प्राप्तियां हैं, उसकी स्वतः याद आती है। तो हम सबको अपने स्नेह को इमर्ज करना है। बाबा ने हम सबको संगम युग पर जो प्राप्तियां कराई हैं, उनका चिंतन जरूरी है। ऐसी जीवन जो बाबा ने दी है, जिसके अंदर इतनी शुद्धता है, दिव्यता है, पवित्रता है, कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि कलयुगी मनुष्यों की जीवन और हम सब बाबा के बच्चों के जीवन में कितना बड़ा अंतर आया है। और वो अंतर बाबा की पढ़ाई से, उनकी याद में रहने से दिखाई देता है। तो जब हम अपनी स्वस्वरूप की स्मृति के साथ साथ अपने जीवन के परिवर्तन और प्राप्तियों को देखते हैं, तो बाबा के प्रति बहुत जिगरी प्यार इमर्ज होता है। क्या जीवन थी पास्ट की, कितना विकारों में लिप्त थे, कितने तमोगुणी संस्कार थे, तमोगुणी खान पान था, कैसा रहन सहन था। बाबा मिला और उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, अपने आप वो सब छूटती गई आदतें। जब इस स्मृतियों में हम रहते हैं तो अपने आप से बहुत अच्छी रूह रिहान होती है, अपने आप से बातें होती हैं। योग की कई स्टेजेज हैं और वो स्टेजेज भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग करनी चाहिए। केवल एक ही विधि से बैठ करके योग करने से थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। बहुत वैरायटी और बहुत नवीनता से योग करना है। हम उसका अभ्यास आज करेंगे प्रैक्टिकल में भी। कुछ वैरायटी हो, कुछ नवीनता हो। वैसे एक सर्किल बाबा ने निरंतर योगी जीवन के लिए दिया है। उस सर्किल के अंदर चार बातें आती हैं। पहला, ज्ञान का अच्छा अच्छा चिंतन करो, जो बाबा ने हम सबको समझ दी है, ज्ञान दिया है, स्वयं का, घर का, पुनर्जन्म का, श्रेष्ठ कर्मों का, सृष्टि के आदि का, मध्य का, अंत का, जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनाया है। कभी अपने आप को नशा चाहते हो कि दुनिया में जिस ज्ञान का बिल्कुल अभाव है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, बहुत अच्छा फिलासफर हो, सब शास्त्र अध्ययन किए हुए हों, हर बात में पढ़ाई के अंदर नंबर वन हो, लेकिन स्वयं की ही पहचान नहीं है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं। कम से कम जब बाबा की याद में बैठते हैं, मन इधर उधर भटकता है, उसको एक स्थिर और एकाग्र करने के लिए अपने आप से बातें करो, अपने मन को समझाओ, मन में ऐसी ऐसी बातें इमर्ज करो कि बाबा ने कितनी सुंदर पहेली हम सबको बताई और हल करके दी। ये देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, कर्म करने वाली, मैं एक बहुत श्रेष्ठ सत्ता, ये चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर को चला रही है, मैं इससे अलग हूं। अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, ये ज्ञान चिंतन कहलाता है। बहुत सा समय इसमें व्यतीत हो जाएगा कि बाबा आपने कितना ऊंचा ज्ञान दिया, पूरे विश्व का इतिहास, भूगोल सब कुछ पढ़ाया है, इतना समझदार बनाया, ज्ञानी तू आत्मा बनाया है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा का एक प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष स्वरूप, उसका लक्षण, उसमें मैंपन का अभाव है। अगर कोई ज्ञानी आत्मा को ये भी रहता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, इसको कुछ पता नहीं, उसको भी ज्ञानी नहीं कहा जाता है, वो भी अज्ञानी है। अगर उस ज्ञानी के अंदर अहम भाव है, मैंपन है, उसके लक्षणों में ज्ञान उतरा नहीं है, जीवन में नहीं आया है, उसके अंदर जितना ऊंचा ज्ञान है उतनी अच्छी निर्माण चित जीवन है, ज्ञान का अच्छी तरह से चिंतन करो, सुमिरन करो, ये भी एक पहली योग की स्टेज है। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे बुद्धि नहीं चलती है, ज्ञान मुख से नहीं वर्णन होता है, तुम चित्रों के सामने जा करके बैठ जाओ, देखो ऊपर से नीचे तक। बाबा ने जब बड़े बड़े चित्र बनवाए, त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, मुख्य जो ज्ञान के चित्र हैं, हिस्ट्री हाल में लगे हुए हैं, पहले चित्र बाबा के समय के पांडव भवन में, बाबा मुरली सुनाते सुनाते कहते थे, बच्चे रात को जागो और इन चित्रों के सामने बैठ करके देखो कैसे मेरे पुनर्जन्म हुए, कैसे सृष्टि चक्र चला, कहां से अनादि स्वरूप मेरा क्या था, आदि स्वरूप में आत्मा कितनी पावन थी, शुद्ध थी, फिर कैसे धीरे धीरे पुनर्जन्म लिए, देह के संग में आते आते देह मानी बनी, दुख और अशांति शुरू हुई, भक्ति, पूजा, पाठ, कर्मकांड करते करते अब व्यभिचारी योग, व्यभिचारी योग में बदल गया। और कितना बड़ा भाग्य है कि हम पुराने भक्तों को फिर से भगवान आकर मिल गया। स्वदर्शन चक्र फिराओ, माया का गला कट जाएगा। फिराते हो कि नहीं? कौन कौन फिराते हो? सभी है? ऐसे तो नहीं फिरा ले तो 8 जन्म 12 जन्म की जन्म 42 जन्म पूरा हो गया चक्कर। बहुत अनुभव के साथ जब कहो कि मैं परम धाम से आत्मा उत्तरित हुई, मेरा अनादि स्वरूप क्या था, तो वो पवित्रता की झलक चेहरे पर दिखाई दे रही है। कितना पवित्र स्वरूप था, कोई दोष नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल निर्मल आत्मा, कोई संकल्पों की भी हलचल नहीं, वो अनादि स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में मैं आत्मा स्थित हो जाओ। योग क्या है? चिंतन करते करते, मनन करते करते मगन स्थिति, योग है। अपने अनादि स्वरूप से उतरो, कैसे जन्म लिया सत्युग के अंदर, योग बल से, प्रकृति दासी है, पांचों तत्व कंट्रोल में है, हर प्रकार के सुख हैं, वैभव हैं, आत्मभिमानी स्टेज है, चोला धारण करते हैं, छोड़ देते हैं, सुखमय संसार है, सत्युग के अंदर रमण करो। धीरे धीरे गिरे, कलाएं कम हुई, लेकिन द्वापर काल भी हम सबका बड़ा सुखमय व्यतीत हुआ है। शिव बाबा की भक्ति शुरू की, अभी विचारी मंदिर बनाए, पूजा पाठ किया, गिरावट विकारों की तरफ पहले न दिखाई दे, गिरावट में भक्ति के अंदर हम घुस गए जाके, और गिरते गिरते नीचे उतरते उतरते हंसते बहलते खाते पीते नीचे आए, कलयुग के अंतिम चरण में आए, आत्मा की कलाएं कम हुई और बाबा मिल गया। बाबा के पालना मिलना शुरू हो गई। चिंतन करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, और फिराते फिराते फिर से चढ़ने का समय आ गया है। अब जाना है, जाना है तो सब समेट लेना है। ज्ञान कहता है कोई भी नया हिसाब किताब अब नहीं बनाना है, जो बने 84 जन्मों में वो इस अंतिम जन्म में चुकतू कर लेना है, चाहे योग बल से चाहे कुछ भोग करके, उनको खत्म करने का समय है, बनाने का समय अब नहीं है। पूरा हो बाबा के साथ पंछी उड़ के जाए, बिना सजाओं के जाए, बाबा के समान बन करके जाए। बाबा जो इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चों को योगी बनाना चाहता है, उसके पीछे यही एक सुभावना है कि आत्मा बाबा की याद से इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ पवित्र बन जाए, शतो प्रधान बन जाए, जो इस शरीर से सहज जैसे मक्खन से बाल निकल जाए, आत्मा इस शरीर से ऐसे डिटैच हो जाए, बाबा के पास चली जाए, कोई भी हिसाब किताब उसको खींचे नहीं, कोई बंधन की रस्सियां खींचे नहीं, इतनी पावन शुद्ध बन करके वापस जाए। तो इस प्रकार पहली याद की स्टेप के अंदर ज्ञान का अच्छा अच्छा चिंतन करो, नशा चढ़ाओ, स्वयं को स्वयं मान दो, किसी के मान की इच्छा नहीं रखो, वो कुछ कहे वो कुछ सम्मान दे, अपने आप को सम्मान दो, बाबा आपने क्या से क्या बना दिया, कितना नॉलेजफुल बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, नशे में बैठो उस समान में बैठो, बाबा आपने कितनी पवित्र स्वच्छ निर्मल निश्चिंत जीवन दी है। योग नहीं है क्या? यही योग है। अब इस योग करते करते फिर बाबा से मीठी मीठी बातें करो, कितना आपको मैंने ढूंढा, कितने मंदिरों में धक्के खिलाए आपने, अब मिले हो। कहते हैं माताएं बड़े प्यार से कहती हैं, अब गिन गिन के हिसाब लेंगे। बाबा से बहुत गोपी बन करके रूह रिहान करो। एक दिन की बात सुनाता हूँ, शुरू शुरू में आया था मुझे योग लगाने का, पता नहीं कैसे होता है। तो दीदी कहती है, दीदी मनमोहिनी हमको बुला के सामने बिठाया, तो मेरे को अचानक बोलती है, तुम गोप है? हमने कहा हाँ जी, गोप, गोपी थोड़ी है। बोली बाबा के बच्चों को भी अच्छे अनुभव करने के लिए गोपी बनना जरूरी है। उद्धव है या गोप है? हमने कहा उद्धव क्या होता है, मुझे तो नहीं मालूम कहानी। कहती उद्धव जो था वो ज्ञानी था, बहुत भावना थी भगवान में, लेकिन वो भगवान की दृष्टि से बहुत ऊंचाई से देखता था। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करती थी, उसको नचाती थी, बांध देती थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, तो पता नहीं किसके साथ कर रही छेड़खानी, भगवान को ऐसे नचा रही है। वो अपनी बुद्धि लगाता रहता था और गोपियां उसके साथ मस्ती करके मस्त रहते थे। तो दीदी ने मुझे ये सिखाया कि जब योग करते हो बाबा की याद सूखी याद नहीं होनी चाहिए, इतना प्यार में खो जाओ जो नैन गीले हो जाए, समा जाओ, बाबा मिल गए, कैसे मिले आप, कितना आपको मैंने पुकारा, कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा, बिना एड्रेस के ढूंढते रहे, भटकते रहे, अगर आपने अपना एड्रेस नहीं दिया होता तो हम कहाँ कहाँ धक्के खाते, कितना पैसा गंवाते, कितना। एक हमारे पास भाई था शुरू शुरू में, यहाँ से आसाम साइड से ज्ञान में निकला, उसका नाम भी बड़ा प्यारा था, उसका नाम प्यारे लाल था, बुजुर्ग था वो, जब ज्ञान में आया तो उसको इतना नशा चढ़ा, इतना नशा चढ़ गया, बाबा से मिलने आया, बाबा के सामने गया, ऐसे ही ऐसे से रख दिया बाबा के आगे, बाबा आपको ढूंढते ढूंढते देखो मेरे बाल ही सारे उड़ गए, मेरा टिप्पड़ घिस गया था और एकदम गीला हो गया, अनैन भर आए कि मैंने कितने धक्के खाए और आप अभी सन्मुख मिले हो, बस प्यार में एकदम समा गया, यही योग है और कोई योग नहीं है। योग की गहराई क्या है? ऐसे बाबा से बातें करो, बाबा आप कितने धक्के खिलाए थे अभी मिले हो, आपने अपना एड्रेस दे दिया, अपनी पहचान दे दी। बिना पहचान के मैं आत्मा कहाँ कहाँ ठोकर खा रही थी, ऐसे बातें नहीं कर सकते क्या? रूरिया नहीं हो सकती ऐसे बातें? को सन्मुख आ जाए, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, जब भगवान के याद में कोई भगत तीक्ष्ण भगत बैठता था, नौधा भगत जिसको बाबा कहते हैं, की याद में लौलीन हो जाता था, तो वो इष्ट जिसकी याद में बैठा हो सामने आ जाता था। आशिक मासिक की यही तो बात है, इसलिए बाबा कहता है मैं मासिक हूं तुम आशिक हो, आधा कलप के आशिक हो, आशिक बन करके मुझ मासिक को याद करो। माना प्यार में समान आशिक हो, नयन गीले हो जाए, नींद कहां से आएगी, बुद्धि कैसे भटकेगी? भटकती है तो हम उसको शांत करना चाहते हैं, और शांत करते हैं तो नींद आने लगती है। भटकने नहीं दो, इतना अच्छा अच्छा चिंतन करो, इतना अच्छा चिंतन करो, और चिंतन करते करते बाबा आप मिल गए उस ज्योति स्वरूप बिंदु रूप को, देखो और उस प्यार में खो जाओ। कितना आपको सब याद कर रहे हैं, कितना आप गुप्त हो, कितना छिपे हुए हो, कोई नहीं पहचानता आपको। सब कोई कह रहा है कणकण में व्यापक है, कोई आत्मा ही परमात्मा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बिना एड्रेस के कितना भटक रहे हैं लोग। और आपने मुझे अपनी सही पहचान दे दी, अपने साथ संबंध जुड़ा लिया, सब संबंधों से आप मुझे मिल गए। बाबा भी, टीचर भी, सतगुरु भी, साजन भी, सखा भी, दोस्त भी, बच्चा भी बन जाता है, सर्जन भी बन जाता है। जिस संबंध से भी उसको याद करो, सब संबंध निभा लेता है। ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से रूह रिहान करके उसके प्यार के सागर में डूब जाओ। फिर सेवा के लिए बाबा ने हमको डबल लाइट बनाया है, बच्चे तुम फरिश्ते ड्रेस में आ जाओ, क्योंकि उड़ना है। साकार साकार सृष्टि में सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम इस शरीर से डिटैच होकर के लाइट के शरीर में प्रवेश करो, और प्रवेश होकर के फरिश्ता बनकर के लोगों को अनुभव करो। अब ये सेवा करने के लिए तो कोई भी इधर उधर की बुद्धि में भटकाव नहीं चाहिए, कोई बोझ नहीं चाहिए, कोई चिंताएं नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मेरे पास ये काम है, मेरे पास ये जवाबदारी है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास ये है ये है। ये जो विकर्मों का बोझ बुद्धि पर है वो थका देता है। समर्पित करो बाबा को, बाबा अब ये बोझ तुम ले ले। बाबा कहता मैं इतना अच्छा सर्वेंट हूं, कहता हूं बच्चे तुम अपना सब बोझ मुझे दे दो, मैं उठाने के लिए तैयार हूं, तुम यात्रा करो। आप कहीं यात्रा पर जाओ, कोई साधन से जाओ, तो क्या करोगे? गठरी अपने सिर पर रख के बैठोगे क्या? कहते एक यात्री घोड़े पर पहले यात्रा करते थे, तीर्थों पर जाते थे, तो घोड़े पर बैठा था और उसकी जो गठरी थी उसको सिर पर रखा था, सामान की, बैठा घोड़े पर था, गठरी सिर पर रखी थी। तो राहगीरों ने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो रहा है, तुम भी घोड़े बैठा तो सामान भी घोड़े पर रख देना, आराम से यात्रा करो, ना सुख लो ना आनंद लो ना। बाबा की गोदी में बैठे हैं और चिंता की टोकरी सिर पर रखी हुई है, यात्रा कर रहे हैं आनंद नहीं ले रहे हैं, ये है ये है ये हुआ ये हुआ। अरे बाबा बैठा है, मिला हुआ है, जान गए हो, पहचान गए हो, सर्व शक्तियों से वो हमारा हो गया है, हजार भुजाओं से ही तुम्हारा साथ है, लेकिन बहुत सच्चा सौदा है, सच्चा सौदागर है वो, बहुत सच्चे दिल से बाबा के आगे अर्पित हो जाओ, सब कुछ समर्पित कर दो बाबा। ये मन, ये संकल्प शक्ति, ये बुद्धि की शक्ति, ये संस्कारों की शक्ति, ये तन की शक्ति, ये मन की शक्ति, ये धन की शक्ति, ये सब तेरी, हल्के हो जाओगे। अगर जरा भी मेरापन है, लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, दबाव है, कहीं पर भी बुद्धि है अटकी हुई, लटकी हुई, तो वो फरिश्ता बन करके सेवा नहीं कर सकता है, वो सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा तो अपने बच्चों को समान बना करके उड़ाना चाहता, बच्चे बहुत दुख बढ़ रहा है, बहुत अशांति बढ़ रही है, चारों ओर आत्माएं पुकार रही हैं, आओ मेरे वतन में, चलो इनको सकाश दो, अनुभव कराओ, सहारे का अनुभव कराओ। दुखी आत्माएं अनुभव करें, कोई फरिश्ता हमारे पास आया था, मेरे मस्तक पर हाथ रखा, मेरे सब दुख हर लिए। कौन कर सकता है ऐसी सेवा जिसके ऊपर कोई मन बुद्धि पर बोझ न हो, जो कोई व्यर्थ चिंतन न करे, बस बाबा के प्यार में खो जाओ, सब जवाबदारियां उसको अर्पित करो। डबल लाइट फरिश्ता, एक लाइट डबल लाइट का अर्थ है एक हल्कापन है, दूसरा प्रकाश है, ज्योति है। जितना वो प्रकाश स्वरूप है, हल्का है, कोई जो बोझ नहीं है, उसका कौन सा आसन होगा। जैसे देवताओं के लिए दिखाते हैं कमल आसन, अब कमल के फूल पर आप एक उंगली भी रख दो तो मुड़ जाएगा। आसन बना लिया योगियों ने, तपस्वियों ने, माना इतने हल्के जो आसनधारी हैं, कमल फूल आसन बन गया, माना कीचड़ पानी कोई भी है संसार में तो उसके ऊपर नहीं आता। योगी वो है जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का दूषित वातावरण का, दूषित संघ का, दूषित कोई भी प्रकार का विकारी प्रभाव न पड़े, वो कमल आसनधारी फरिश्ता बन सकता है, लाइट बन सकता है, बाबा की पलकों में बैठ करके उड़ सकता है। विचार करना, मैं इतना डबल लाइट बना हूं जो बाबा अपने नैनों में बिठाए और सैर कराए वतन की, चलो बच्चे हमें यूज कर सके। अब ऐसे लायक हम बन जाएं जो बाबा हमें यूज करे, कोई इधर उधर की व्यर्थ बातों की चिंता नहीं करो। जब ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, जब ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई रहस्य और कल्याण समाया हुआ है, फिर हम अपनी बुद्धि को उसमें लगा करके अपने चिंतन को खराब क्यों करते हैं? क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब, इन प्रश्नों में लग करके अपने आप को उलझन में क्यों डालते? फुल स्टॉप, सोचना भी नहीं है, सब अच्छा है, ड्रामा कल्याणकारी है। बहुत बड़े बड़े सीन में भी कुछ न कुछ राज समाये हुए हैं, जो हो रहा है उसमें नई दुनिया के गेट खुलने की तैयारी है। एक बहुत अच्छा चिंतन करके अपने आप को इतना लाइट बना लो कि अपने आप उड़ने लगो, पैर इसके पंख पर पृथ्वी पर ही नहीं ऊपर है। पांडवों को ऐसा बनना है, सुन रहे हो, ऐसा बनना है, अभी बने नहीं है सब, कोई न कोई चिंता की टोकरी सिर पर है। बैठते हैं योग में थोड़ी देर तो ठीक रहता है, फिर बुद्धि भटकने लगती है इधर उधर। उड़ जाओ बाबा के पास, चले जाओ, बाबा को बोलो बाबा जहां आपको हम सेवा पर हाजिर है। डबल लाइट ड्रेस है हमारे पास, है सबके पास। बाबा कहता बच्चे अपनी अपनी ड्रेस देखो, बहुत अच्छी है, चमकीली है, दाग वाली ड्रेस नहीं वहां पहुंचेगी, मैली ड्रेस नहीं जा सकती, ये मैली ड्रेस तो देहमान वाली है जो हम यहाँ पहन के बैठते हैं। लेकिन बाबा के वतन में वही ड्रेस पहुंचती है, उसी ड्रेस वाला पहुंचता है जिस पर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। इतनी आत्मा और शरीर दोनों प्योर हैं, शुद्ध हैं, चिंतन अच्छा है, हल्के हो जाओ, बाबा के पास वतन में पहुंच जाओगे। अपना ये लाइट का शरीर खुद ही निर्माण करो, 24 घंटे के सर्किल में देखो कितना समय इसमें साधारण और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर साधारण और व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल आ जाए, बहुत शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प चले, तो फरिश्ता ड्रेस बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये संकल्प जब उठते हैं तो ये एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर उसका आभा मंडल बनता है। मन जिस प्रकार के संकल्प रचता है उसी संकल्प का ओरा तैयार होता है, और जब वो इस शरीर से डिटैच होता है तो उस ओरे के साथ जाता है, वही शरीर है सूक्ष्म, वही फरिश्ता ड्रेस है। अगर अचानक कोई बहुत बुरा, कोई इच्छाएं लेकर के नेगेटिव वृत्ति से, दुख देने की भावना से बैठा है और शरीर छोड़ दिया, अकाले मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर कुछ समय जब तक उसको अगला शरीर मिले तब तक वो भूत के रूप में काली छाया लेकर घूमता है, दरवाता है, जहां उसकी इच्छा पूरी होने वाली होती वहां पहुंचता है। लोग कहते हैं भूत था यहाँ, ये था, ऐसा था, भयभीत कर देता है। वो भी तो छाया है ना, वो अशुद्ध संकल्प इविल स्पिरिट्स के रूप में, इविल संस्कारों के कारण बनी। और जितने आत्मा शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प करती है, वो भी बिना शरीर के तो कोई रह ही नहीं सकता इस आकार सृष्टि में। ये शरीर ले ले या लाइट का शरीर ले, अकेले तो भटकेगी नहीं, जाएगी नहीं। तो शरीर लाइट का मेला, फरिश्ते का मेला, आत्मा यहां से गई अनेकों को साक्षात कर। बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद क्यों अनुभव करते हो, शरीर में रह के अनुभव करो। हैं शरीर में लेकिन इतना लाइट है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है। फरिश्ता कोई आत्मिक स्वरूप के बिना नहीं है। आप देखेंगे उसका जब चित्र भी बनाएंगे तो फेस दिखाएंगे, बहुत पैर ऊपर हल्का एकदम उड़ रहा है, पंख है ज्ञान योग के, बहुत संसार के अंदर जब दुख बढ़ रहे हैं तो बाबा हम बच्चों को कह रहा है तैयार हो जाओ बच्चे इनकी सेवा करने के लिए। मैं अकेले कहां तक करूंगा, मेरे बच्चों की सेना चाहिए। तो हैं सब तैयार, भट्टी तो इसीलिए कर रहे हो ना कि बाबा हम आपके राइट हैंड, आपके सदा सही होगी, आप जहां इस सेवा में लगाना चाहो लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई भी साधारण व्यर्थ नेगेटिव तेरे मेरे का पर चिंतन पर दर्शन वाला संकल्प नहीं चाहिए। मैं एक लाइट माइट संपन्न स्वरूप शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं भगवान की चुनी हुई अनमोल रत्न हूं, मैं हीरो एक्टर हीरो पार्टधारी हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं। ये जितने सम्मान दिए जा रहे हैं उसी लिए दिए जाते, सम्मान में स्थित हो जाओ, बहुत सुंदर लाइट का शरीर बन जाएगा। और लाइट के शरीर से फरिश्तों की दुनिया में जाओ, बाबा के वतन को, लाइट के वतन को इमर्ज करो और फिर बाबा के साथ सैर करो। जैसे बाबा दृश्य दिखाता है कि मैं एक ऊंची चोटी पर पहाड़ी पर खड़ा हूं और नीचे पहाड़ी के नीचे बहुत सी आत्माएं पुकार रही हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, और बाबा ऊपर से खड़ा हुआ से सकार दे रहा है, शांति सुख की आनंद की किरणें ऊपर से आ रही हैं, वो आत्माएं महसूस कर रही हैं, फरिश्ता मेरी रक्षा कर रहा है। ऐसे दृश्य इमर्ज करके, ये दृश्य इमर्ज करो और इमर्ज करके उस फरिश्ते स्वरूप में लाइट रूप में बैठ करके सर्व आत्माओं को सकाश दो। ऐसे आधा घंटा तो आपका टाइम पास हो जाएगा, लगेगा ही नहीं आधा घंटा हो गया। फिर उसके बाद बाबा कहता है बच्चे वो स्टेज है योग की, पावरफुल स्टेज, जिसको भिन्न भिन्न नामों से हम सब जानते हैं। बाबा कहता है लाइट माइट स्वरूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप की याद, बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप बन करके मैं बाबा जैसा बन करके बाबा के साथ बैठ जाऊं। संकल्पों की भी हलचल नहीं है, अनुभव है असीम शांति, असीम सुख, असीम प्यार। वो शांति धाम के घर की अनुभूति है, वो परम धाम की ऊंची स्टेज, वहां पर बैठ करके बाबा की शक्तियां लो, अनुभव करो कि बाबा की सब शक्तियों की किरणें मेरे रूप में प्रवेश हो रही, मुझे आत्मा में, और आत्मा शक्तिशाली बन करके पूरे वृक्ष को, पूरे ग्लोब को लाइट दे रहे। अनुभव के संकल्प इमर्ज करके फिर समाने का अनुभव करो, सब वो भी संकल्प समा जाए। ये चार स्टेजेज हैं योग की। पहला ज्ञान मनन चिंतन किया, दूसरा बाबा से बहुत प्यार से दिल की बातें की, रूरियान की, तीसरा फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के एकदम डबल लाइट बन करके सर्व आत्माओं को मदद की, सकाश दी, सेवा की, और चौथा एकदम बीज बन करके समानता का, समान स्टेज का अनुभव। सारे वृक्ष को बीज से शक्ति मिलती है। मैं बाबा के साथ बीज रूप आत्मा इस वंशावली को, जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, शिव बाबा बीज रूप वृक्षपति है, ऐसे हम बच्चे भी बाबा के समान पूर्वज आत्माएं मास्टर रचयिता उस समान में बैठ करके उस पूरे वृक्ष को इमर्ज करो, शक्ति दो। बहुत गहरे अच्छे अनुभव होने लगेंगे, ऐसे लगेगा सचमुच इस शरीर में है ही नहीं, ये भारीपन शरीर का खत्म हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हल्की हल्की फरिश्ते। फिर बोलने की दिल नहीं करेगी, आवाज आने की दिल नहीं करेगी, काम से काम आए भी साकार सृष्टि पर कर रहे हैं लेकिन एकदम उपराम है, न्यारे हैं, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर रही है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई चाहना नहीं है। जो कहते हैं ना योगी की स्टेज समान स्टेज बन जाती, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई महिमा करे, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय दुख सुख सब में समान स्टेज, वो योगी की संपूर्ण स्टेज है, योग की संपूर्ण स्टेज है। उस स्टेज को प्राप्त करके हम इस संसार के चक्र में रहें लेकिन एकदम अलग दिखाए कि ये दुनिया से अलग है, कोई खिंचाव इनको नहीं है, कर्म भले कर रहे हैं, कर्मातीत नहीं बने हैं लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों की आकर्षण से पार है, फिर कोई आत्मा भी कर्म नहीं कर सकती, गलत काम नहीं हो सकता, फिर राजा बन जाएगी कर्म इंद्रियों की, मन और बुद्धि की। योग से ऐसी स्टेज प्राप्त करनी है जो आत्मा एकदम विकर्मों से मुक्त हो जाए, कोई संकल्प भी विकल्प के रूप में ना आए, स्वप्न में भी ना आए। अभी तक तो कई प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, कुछ सोचते हैं देखते हैं सुनते हैं, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ा, सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव नींद के ऊपर पड़ता है, दिखाई देता है। अपनी ऊंची स्टेज का सही दिशा में आकलन करना है तो सबसे अच्छा नींद है। देखो स्वप्न में क्या होता है, क्या क्या संकल्प आते हैं, किधर किधर के आते हैं, कई चीजें सपनों को प्रभावित करती हैं। कोई ऐसी वैसी चीजें देख लिया, उसका प्रभाव छाप पड़ गई, उसका चिंतन चल गया, वही नींद में दिखाई देने लगेगा। कुछ ऐसा खा पी लिया, गरम खा लिया, कुछ ऐसा तेज खा लिया, शरीर पर उसका अंदर इफेक्ट हुआ जा करके, मन के ऊपर इफेक्ट हुआ और नींद के अंदर स्वप्न के रूप में भयानक रूप में आ जाता है। मान लो आज आप कुछ खा करके डायरेक्ट सो गए, मुंह साफ नहीं किया, दांतों में कुछ फंसा हुआ है तो पता नहीं क्या क्या दिखाई देने लगेगा। सफाई की क्यों जरूरत है, स्वच्छता की क्यों जरूरत है, बिना हाथ पैर धोए बाहर से आए ऐसे ही लेट गए, पता नहीं क्या क्या ख्याल स्वप्न आने लगेगा। स्वप्नों का कनेक्शन बहुत सारी बातों से है, अगर अच्छे स्वप्न सेवा के स्वप्न आए तो उसके लिए उसी प्रकार का चिंतन उसी प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। मुझे कुछ दिन तो ऐसा एक अनुभव हुआ जब मैं रात भर बाबा के साथ बैठता था, टाइप करता था, बाबा बोलते थे मैं लिखता था, तो बहुत बार बाबा नहीं आए, 5 महीना 6 महीना सीजन नहीं है, और मैं कई बार स्वप्न में ऐसे लिख रहा, बाबा बोल रहा है मैं लिख रहा हूँ, नहीं ये क्या है, एक आदत जैसे बन गई, स्वप्न ही हो गए जा करके। और कई बार इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो बाबा की सुनी नहीं है वो भी स्वप्न में सुनाई देती थी, तो बाबा ये आज बोला, और मैं उस पर इतना खुश होता था आज बाबा ने नया बोला। और मेरी एक आदत बनी कि जो हमको याद रह जाए, कई बार स्वप्न की बातें भूल जाती जल्दी, लेकिन मैं उसको रिपीट करता था कि मेरे को आज बाबा ने ये स्वप्न में दिखाया, बोला, मैंने टाइप किया, मैंने लिखा। मैं फटाफट डायरी में निकाल उठाता था सवेरे सवेरे योग के पहले, और पेन और डायरी लेकर के वही लिख लेता था कि जिसे भूल न जाए। इतना अच्छा उसका प्रैक्टिस हो गया कि देखो बाबा ने हमारे स्वप्न भी कितने शुद्ध बना दिए, कितने अच्छे बना दिए, क्योंकि उसी माहौल में है, वही चिंतन है, वही सेवा है, उस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं। अगर इन पर जीत हो गई, ये हमारे शुद्ध और पवित्र बन गए। कुछ है जो पास्ट संस्कारों के आधार से, पास्ट किए हुए कर्मों के आधार से आते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो समाप्त हो जाए ना आए, क्योंकि बहुत समय के हिसाब किताब 84 जन्म आत्माओं के साथ रहे हैं और इस जन्म में भी कई गलत काम हुए हैं। जब तक उस पर कड़ी नजर नहीं है, जब तक उसको परिवर्तन समाप्त करने का एक दृढ़ता का संकल्प नहीं है, तब तक वो स्वप्न के रूप में अटैक कर रहा है। इसलिए बाबा के तब अच्छे एकदम बीज बनकर के मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाए। विकर्म विनाश का अर्थ क्या है, क्या समझते हो? विकर्म विनाश का अर्थ है कि हमारे संस्कार और स्वप्न बदल जाए, परिवर्तन दिखाई दे। हम योग कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे विकर्म विनाश हो गए, गुस्सा जा ही नहीं रहा है, काम विकार की अग्नि लगी पड़ी है, अनेक प्रकार के विकल्प विकार विकारी इधर उधर के चल रहे हैं, कैसे कहेंगे विकर्म विनाश हो गए? 10 साल 15 साल से योग लगा रहे हैं, वैसे के वैसे हैं, वो आदतें और पक्की होती जा रही हैं छूटने की बजाय। माना विकर्म तो विनाश नहीं हुए ना, विकर्म विनाश माना परिवर्तन दिखाई देना चाहिए जीवन के अंदर। ये जो ईर्ष्या है, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, जोश है, आवेश है, ये जो कड़े नेगेटिव विकारी संस्कार हैं, कम से कम पिघल जाए ना योग करने से। अगर हमारा योग यथार्थ है, मान लो 2 घंटा तपस्या किया और यहाँ से बाहर गए, कोई बात हो गई, फट से गुस्सा आ गया, गाली देना शुरू कर दिया, संस्कार चेंज हुए क्या? कई ब्राह्मण आत्माएं 20 साल 25 साल 30 साल से ज्ञान में चल रही है, अपने बोल पर ही कंट्रोल नहीं आया, फायदा क्या हुआ? अगर मेरे बोल के उस वाचा के शब्दों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो योग क्या किया? योग है किस लिए? योग अग्नि है। आज आग के अंदर कोई भी चीज डाल दो, लोहा भी डाल दो, वो भी पिघल जाता है, वो भी काला लाल रंग ले लेता है, उसको जेवर बना देते, उसको कई औजार बना लेते। अग्नि के अंदर गया ना, ईंट कच्ची डाली अग्नि के अंदर, वो पक कर के पक्की मजबूत हो गई। सोने को अग्नि के अंदर डाला, उसकी अलाय निकल गई, वो प्योर मोल्ड होने लगा। और हम इतने देर से अग्नि में पड़े, हम मोल्ड नहीं होते, वही संस्कार चल रहे हैं। विचार करना है इस पर। अगर योग यथार्थ है, सही दिशा में हम योगी हैं, तो हमारे संस्कारों में वो बहुत नम्रता, दिव्यता, अलौकिकता, वो रूहानियत, तो सने सबके प्रति अपनत्व, सब अपने हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, बेहद की भावनाएं, वो नेचुरल स्वरूप में दिखाई देंगी। प्रैक्टिकल योगी आत्मा है। इसलिए बाबा कहता है तुम योगी जीवन वाले हो, योग लगाने वाले नहीं हो। लगाने वाले तो मेहनत करते, आधा घंटा योग किया, फिर वही की वही। एक बार हंसी की बात सुनाता हूँ, जगदीश भाई ने एक लेख लिखा। जगदीश भाई बहुत रमणीक भी थे, तो उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति ने सोचा कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करके हम छोड़ेंगे। कहता उसने कुत्ते की पूंछ को एक पाइप में डाल दिया और कहा पाइप में पड़े पड़े तो कम से कम सीधी हो ही जाएगी, 1 साल तक नहीं निकालेंगे। लेकिन जब 1 साल के बाद फिर पाइप निकाला तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो जगदीश भाई ने लिखा उसमें कि संस्कार ऐसे हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, वो कितना भी इस ज्ञान योग की भट्टी में डाल देते हैं, कितना भी उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो फिर जो देखो तो वही टेढ़े के टेढ़े। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये संस्कारों पर कड़ी नजर चाहिए। इसके लिए थोड़ी मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। रूह रिहान करो, बातें करो, उसके लिए तपस्या करो, उसके लिए कुछ समय निकालो, अपने को पढ़ाओ। अपने को बदलने का तरीका, ये क्लास नहीं है, सिर्फ योग नहीं है, सिर्फ मुरली नहीं है, अपना टीचर बनो। एकांत में चले जाओ, अपने आप से पूछो, जब बाबा मिला, जब ये चक्र को हम पूरा समझ गए कि ये समय पूरा हो रहा है, अब वापस जाना है, सब हिसाब किताब चुक तो करने। अगर सचमुच ये हमको पक्का विश्वास है, हम सही दिशा में अपने आप को समझते हैं, तो फिर जो पास्ट के संस्कार हों बार बार क्यों हमारे को अटैक करेंगे? उसके लिए प्रतिज्ञा करो, तपस्या करो। कई बार बाबा कहता है बच्चे खाना पीना भी छोड़ दो, नींद भी त्याग दो, मुझे बदल के दिखाना है। मैंने तो अपने साथ ऐसी मेहनत की है, मेरे पास वैसे कई संस्कार थे, बैठ जाता था, चिंतन करता, बाबा ये अभी तक क्यों है, किस लिए है। जब तक मेरे जीवन में सरलता नहीं आई, नम्रता नहीं आई, दिव्यता नहीं आई, तो हमारा आपका बनने का फायदा क्या मुझे, क्यों मुझे गुस्सा है, क्यों मुझे चिड़चिड़ापन आए, क्यों मेरी दृष्टि वृत्ति खराब हो। मेहनत करो, लगन से बाबा को प्यार करो, याद करो, शक्ति लो, सकाश लो, यही योग है, यही योग की गहराई है। प्रयोग करो, सिर्फ योग नहीं लगाओ। शरीर के ऊपर कोई बीमारी आ गई, बाबा की ऐसे किरणें लो, शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की, उन किरणों का प्रयोग करो, शक्ति जा रही है और बीमारी दूर हो रही है। बहुत पॉजिटिव संकल्प, मैं बीमार हूं, मेरे को ये हुआ, सोच करके भारी नहीं हो जाओ, आया है हिसाब किताब, चला जाएगा। कोई सदाकाल बीमारी नहीं रहती, कोई पेपर सदाकाल नहीं होता, पेपर एक दो दिन आता है, खत्म हो जाता, क्लास आगे बढ़ जाते हैं। हाय हाय करने की बजाय एकदम बाबा के प्यार में खो जाओ, उस किरणों को एकदम एकाग्र कर लो अपने ऊपर, और किरणें लाइट रूप में शरीर के ऊपर डालो, कई शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएगी। ये प्रयोग है, जैसे साइंस ने प्रयोग करके दिखाया है सोलर एनर्जी कैसे बनी, प्रयोग किया ना, कांच को साफ किया, कांच ऐसा स्पेशल लिया, सूर्य की तरफ उसकी दिशा दे दी, जिधर जिधर सूर्य की परिक्रमा है वो कांच उसके साथ घुमाने लगे, और सूर्य की कंटिन्यू किरणें उसके ऊपर आई, वो रिफ्लेक्ट होती गई, वो रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की शक्ति को कई गुना बदल दिया, और उसने पानी को भाप बना दिया, बैटरी चार्ज हो गई, कहीं पर भी अग्नि पैदा कर दिया। कैसे किया, प्रयोग किया ना, साइंस प्रयोग कर सकती है। मैं आत्मा बाबा की किरणों को इस शुद्ध कांच पर ले लूं, और शुद्ध कांच पर लेकर के चाहे प्रकृति पर दे दो, पेड़ पौधों पर दे दो, संस्कारों पर दे दो, कहीं पर भी उसको डालो, है बाबा की किरणें। ऐसे नहीं मैंने भी योग का प्रयोग करके इसको चेंज कर दिया, फिर अहंकार क्या आ जाता है, मैंने किया ना तो ये ज्ञान में चल गया, मैंने किया ना तो इसने इतना धन से सहयोग दे दिया, उसमें भी मैंपन आ जाता है। बाबा कहता मैंपन इनको महिला बना देता है, मेरे पास कहां शक्ति है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत शुद्ध पवित्र, इतना शुद्ध बना लूं जो बाबा की सब किरणें मेरे ऊपर एकाग्र हो जाएं, और वो किरणें जिधर रिफ्लेक्ट हों उधर परिवर्तन दिखाई दे। ये प्रयोग, आपके घरों में कोई विघ्न डाल रहा है, आपको पवित्र जीवन में बाधा पड़ रही है, कहीं कुछ बातें आ रही है, नहीं खान पान आपको शुद्ध मिल रहा है, कम से कम 21 दिन 15 दिन प्रयोग तो करो, लेकिन विधि यथार्थ हो, स्वार्थ वाली नहीं है, परिवर्तन की है, बदल जाए। बाबा से किरणें लेकर के 15 मिनट भी, बाबा इस बच्चे की बुद्धि को चेंज करो, इसको अपना बनाओ, इससे अपना अधिकार दिलाओ, बहुत प्यार से बाबा को याद करो, बैठ जाओ बाबा की याद में, उस आत्मा को इमर्ज करके देखो, आपको कुछ दिन में रिजल्ट दिखाई देगी। कोई बहुत कड़े हिसाब किताब है वो अलग बात है, बहुत मुश्किल, लेकिन कभी भी आप नेगेटिव संकल्प नहीं करो, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो बदलने वाली नहीं है, क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं सुधरेगा। बाबा जब सारी दुनिया को बदलने का ठेका लिया है, कहता मैं ठेकेदार हूं, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूं, मैं सबको पावन बनाऊंगा, जब उसने सारी दुनिया को बदलने का ठेका लिया तो इस आत्मा को नहीं बदल सकता है क्या, जरूर बदलेगा। ऐसी बहुत शुभ भावना से संपन्न बनकर, सेवा का, योग के प्रयोग का आधार है शुभ भावनाएं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं बाबा के प्रति, उस आत्मा के प्रति, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये इस बीमारी से मुक्त हो जाए, ये सहयोगी बन जाए, ये अपना वर्षा ले ले, ये अपना अधिकार ले ले, बाबा आप इसके लिए कुछ करो, मैं आपको याद करता हूँ, मैं उसको किरणें देता हूँ, बाबा आपकी किरणें लेकर के इस मस्तक से उस आत्मा को दूं। हर विघ्न को हटा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्प चाहिए। कोई भी नेगेटिव कार्य, आप कोई भी कार्य में जाते हो, मान लो आज कोई काम ऑफिसर से किसी से कराना है आपको, आप जाते समय ये सोचने लगते हो वो व्यक्ति तो बहुत क्रोधी है, बहुत भ्रष्टाचारी है, वो तो बहुत पैसे लेके काम करने वाला है, कैसे करेगा, होगा या नहीं होगा। पहले आपने अपने वो नेगेटिव विचार जो सुने सुनाए हैं, जो इधर उधर से बातें आई, उसको दे करके उसके संकल्प को जागृत कर दिया, उसके संस्कार को जगा दिया, और फिर आप जा रहे हो, आपका कैसे काम होगा? आप गलत दिशा से जा रहे हो ना। आपके अंदर ये संकल्प होना चाहिए, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी, वो व्यक्ति जरूर काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, करा के छोड़ेंगे, उसका भाग्य बनेगा। ऐसे बहुत पॉजिटिव विचार लेकर के उस आत्मा को स्नेह और शक्ति दे करके काम करा लो। ये विधियां बाबा ने बताई ना, इन विधियों की बजाय हम बहुत सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, कोई ने कुछ उसके बारे में रिपोर्ट दे दी, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, ऐसा है, तो वही संकल्प नेगेटिव लेकर के वहां जाएंगे, रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं योग की यथार्थ विधि के प्रयोग से। विधि यथार्थ है, सिद्धि अवश्य मिलनी है। तो ऐसे योगी बन करके, गहरे योग का अनुभव करके प्रयोग जरूर करो, संस्कारों पर प्रयोग करो, संबंधों पर प्रयोग करो, समस्याओं पर प्रयोग करो, अपने कोई ऐसी निजी बीमारियां हैं शारीरिक, उन पर प्रयोग करो। हर बात में आप सिद्धि स्वरूप बन सकते हो, लेकिन विधि रखना यथार्थ। आत्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है और वो बाबा की किरणों को लेकर के ऐसे दे रही है, ठीक है। ऐसे कांच को शुद्ध रख करके अभी हम सभी एक घंटा प्रयोग करेंगे। तीन स्टेजेज में हम योग करेंगे। कोई उठना बहुत जरूरी लगता हो तो 5 मिनट की छुट्टी है, फ्रेश होके फिर बैठ सकते, बहुत जरूरी हो तो, नहीं तो 7:30 बजे फिर सबको छुट्टी मिलेगी। Thank you.